लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, पाकिस्तान में इस वर्ष जून महीने से मानसून के दौरान लगातार बारिश, औचक बाढ़ और बारिश के कारण भूस्खलन से भीषण बर्बादी हुई है, जिससे देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों के साथ अपनी एकजुटता दर्शाने के इरादे से 2 दिवसीय यात्रा की। उन्होंने इस जलवायु तबाही से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पुकार लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान शुक्रवार को राजधानी इस्लामाबाद में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एक साझा प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने इस त्रासदी से प्रभावित हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, जिनके घरों, व्यवसायों और आजीविका के साधनों को नुकसान पहुंचा है। महासचिव ने आगाह किया कि कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहे हैं और लोगों की बाढ़ और अकाल में मौत हो रही है। ये बिल्कुल नासमझी भरा है, ये सामूहिक आत्महत्या है।
From Pakistan, I'm issuing a global appeal. Stop the madness. End the war with nature. Invest in renewable energy now.
UN प्रमुख पाकिस्तान से एक वैश्विक अपील जारी करते हुए कह रहे थे कि इस उन्माद को रोकिए, प्रकृति के साथ युद्ध का अंत कीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कीजिए। देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर अपेक्षाकृत कम है, मगर पाकिस्तान जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले 10 देशों में है।
No country deserves this fate, but particularly no countries like Pakistan that have done almost nothing to contribute to global warming.
महासचिव कह रहे थे कि किसी भी देश को ऐसे अनुभव से नहीं गुजरना चाहिए, मगर विशेष रूप से पाकिस्तान जैसे देशों को, जिन्होंने वैश्विक तापमान की वृद्धि में अपना कोई योगदान नहीं दिया है। यूएन प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि बाढ़ संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान को विशाल वित्तीय समर्थन की दरकार होगी। विनाशकारी बाढ़ से अब तक $30 अरब से अधिक की बर्बादी हो चुकी है।
मानव विकास पर गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की एक नवीन और अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अनेकानेक संकट मानव विकास पर प्रगति के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं और अधिकतर देशों में मानव विकास पीछे की ओर जा रहा है। कुछ और जानकारी के साथ महबूब खान।
वर्ष 2021-22 की इस मानव विकास रिपोर्ट में एक ऐसे वैश्विक समाज की तस्वीर पेश की गई है जो एक के बाद एक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है और जो बढ़ते अभावों व अन्यायों के जोखिम का भी सामना कर रहा है। वैश्विक व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाओं में सबसे ऊंचा स्थान कोविड-19 महामारी का और उसके बाद यूक्रेन पर रूसी हमले का है। इस हमले के अलावा व्यापक सामाजिक और आर्थिक बदलावों, पृथ्वी के अस्तित्व से संबंधित खतरनाक परिवर्तनों और ध्रुवीकरण में बेतहाशा वृद्धि का माहौल भी अपनी तरह की चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। इस सूचकांक में देशों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन के स्तर का आकलन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP पिछले लगभग 32 वर्षों से मानव विकास सूचकांक यानी SDI की गणना करता रहा है और इस अवधि में इस सूचकांक में पिछले 2 वर्षों में वैश्विक स्तर पर लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मानव विकास पीछे की तरफ जाकर 2016 के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में हासिल की गई प्रगति उलट गई है। गौरतलब है कि ये लक्ष्य मिलकर ही 2030 का टिकाऊ विकास एजेंडा बनाते हैं, जो कि दुनिया भर के लोगों और पृथ्वी के लिए एक बेहतर व न्यायसंगत भविष्य की खातिर संयुक्त राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है। यूएनडीपी के प्रशासक अखीम स्टीनर का कहना है कि दुनिया एक के बाद एक संकटों का सामना करने में बहुत मुश्किलें उठा रही है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया, जिनकी मृत्यु गुरुवार 8 सितंबर को हुई। महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सम्राज्ञी और सबसे लंबे समय तक रही राष्ट्र प्रमुख थी। महासचिव ने जारी अपने वक्तव्य में कहा कि महारानी एलिजाबेथ उनके विनम्र व्यवहार, गरिमा और समर्पण के लिए विश्व भर में उनकी प्रशंसा की जाती रही है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि सोमवार 19 सितंबर को होगी। इस मौके पर राज परिवार के सदस्य और दुनिया भर के नेता वहां मौजूद होंगे। अंत्येष्टि वेस्टमिंस्टर एबे में होगी। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए लंदन जाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। महासचिव ने ध्यान दिलाया कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय संयुक्त राष्ट्र की एक अच्छी मित्र थी और उन्होंने न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय का 50 वर्षों से अधिक समय के अंतराल में दो बार दौरा किया। 1957 में महारानी ने महासभा को संबोधित करते हुए कहा,
The peoples of the world expect the United Nations to persevere in its efforts.
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन स्कॉटलैंड के बालमोरल किले में हुआ, जहां शाही परिवार के सदस्य ग्रीष्म ऋतु में अक्सर अवकाश व आराम करने के लिए आते हैं। पिछले एक वर्ष में उन्होंने अपने कुछ राजसी दायित्वों को अपने सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को सौंप दिया था, जो कि उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। मई 2022 में संसद सत्र के आरंभ होने पर प्रिंस चार्ल्स ने सभापति का दायित्व संभाला और 1963 के बाद ये पहली बार था जब महारानी एलिजाबेथ ने इस संसदीय कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया।
महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत यूएन संस्था और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडेसा ने बुधवार 7 सितंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो दर्शाती है कि यदि पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा में प्रगति का मौजूदा रफ्तार ही जारी रही तो इस लक्ष्य को पाने में करीब 300 साल लग सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी, हिंसक संघर्ष और जलवायु परिवर्तन समेत सिलसिलेवार वैश्विक संकटों की पृष्ठभूमि में लैंगिक विषमताएं बद से बदतर हो रही हैं। इसके साथ साथ महिलाओं के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर प्रहार से हालात और चुनौतीपूर्ण हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप देशों के लिए 2030 की समय सीमा के भीतर टिकाऊ विकास के 5वें लक्ष्य को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। बुधवार को जारी द जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट दर्शाती है कि दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए किस तरह सहयोग, साझेदारी और निवेश की आवश्यकता है। जल्द कार्रवाई के अभाव में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर प्रतिबंध न लगाने वाली या विवाह और परिवार में उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करने वाली कानूनी प्रणालियां आने वाली अनेक पीढ़ियों तक जारी रह सकती हैं। रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को कार्यस्थलों पर नेतृत्व के पदों पर समान प्रतिनिधित्व हासिल करने में 140 साल लगेंगे और राष्ट्रीय संसदों में ऐसा होने में 40 साल तक लग सकते हैं। इस बीच वर्ष 2030 तक बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए पिछले दशक की तुलना में प्रगति में 17 गुना तेजी लानी होगी। रिपोर्ट में गरीबी उन्मूलन प्रयासों को धक्का पहुंचने पर भी चिंता व्यक्त की गई है। बढ़ती कीमतों के कारण स्थिति और अधिक बिगड़ने की आशंका है। यह रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन शिखर बैठक से पहले जारी की गई है, जो कि इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान आयोजित की जा रही है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
वंदना वंदना।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कहा है कि हालांकि यह कठिन है, तथापि मॉस्को के साथ संवाद का रास्ता सदैव खुला रहेगा। गुरुवार को कजाकिस्तान में अपनी 3 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा कर रोम की वापसी यात्रा के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने पत्रकारों के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। यूक्रेन में जारी रूसी युद्ध पर बोलते हुए संत पापा ने यूक्रेन द्वारा उसकी सुरक्षा के अधिकार की पुनर्पुष्टि की तथा शांति की आवश्यकता पर बल दिया। कजाकिस्तान में अपनी यात्रा के अंतिम दिन संत पापा फ्रांसिस ने एक अंतर धार्मिक सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसके अंत में जारी एक विज्ञप्ति में विश्व के समस्त राजनीतिक नेताओं का आह्वान किया कि वे विश्व के सभी कोनों में संघर्ष और रक्तपात को रोकने का हर संभव प्रयास करें। अपने परमाधीक्षी काल के प्रारंभ ही से संत पापा फ्रांसिस वार्ताओं की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। गुरुवार को पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भी संत पापा ने कहा कि हालांकि रूस के साथ बातचीत असंभव प्रतीत हो रही है, तथापि इसका भरसक प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। रूस, चीन और यहां तक कि निकारागुआ के साथ भी बातचीत का उन्होंने अनुरोध किया, जहां की सरकार कुछ समय से कैथोलिक कलीसिया को उत्पीड़ित कर रही है। संत पापा ने कहा, मैं किसी भी ऐसी शक्ति के साथ बातचीत से इनकार नहीं करता जो युद्ध में संलग्न है, भले ही वह हमलावर ही क्यों न हो। उन्होंने कहा, हालांकि इसमें अड़चन प्रतीत होती है, तथापि आपको यह करना होगा, हमेशा हाथ बढ़ाकर एक कदम आगे जाना होगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो विकल्प शांति का एकमात्र द्वार बंद करना होगा। संत पापा फ्रांसिस को उम्मीद थी कि कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में उनकी यात्रा रूसी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के प्रमुख प्रादि धर्माध्यक्ष किरिल से मिलने का मौका देगी, जिन्होंने यूक्रेन में रूस के युद्ध को आध्यात्मिक और वैचारिक आधार पर उचित ठहराया है, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। विगत माह प्रादि धर्माध्यक्ष किरिल ने अंतरधार्मिक सम्मेलन में अपनी अनुपस्थिति की सूचना दे दी थी, किंतु सम्मेलन में भाग लेने वाले उनके दूत ने कहा कि कैथोलिक कलीसिया और रूसी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया दोनों के विश्व धर्म गुरुओं के बीच बैठक संभव है, लेकिन इसे पहले से और अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। संत पापा ने इस बात की पुनरावृत्ति की कि मॉस्को के आक्रमण के खिलाफ खुद को बचाने के लिए यूक्रेन द्वारा हथियार प्राप्त करना नैतिक रूप से स्वीकार्य था। उन्होंने कहा कि यह अनैतिक होता यदि यह अधिक युद्ध को भड़काने या हथियार बेचने या उन हथियारों से छुटकारा पाने के इरादे से किया जाता जिनकी आपको अब आवश्यकता नहीं है। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को निकारागुआ की सरकार से अनुरोध किया कि वह देश से भगा दी गई उदारता के मिशनरी धर्म संघ की धर्म बहनों को वापस निकारागुआ लौटने की अनुमति दे, क्योंकि वे किसी की हानि न करने वाली सुसमाचार की क्रांतिकारी हैं। डैनियल ओर्तेगा की सरकार द्वारा कैथोलिक कलीसिया पर कार्रवाई के हिस्से के रूप में जुलाई माह में कोलकाता की मदर तेरेसा द्वारा स्थापित उदारता के मिशनरी धर्म संघ की 18 धर्म बहनों को कोस्टारिका की सीमा पर ले जाकर छोड़ दिया गया था। मध्य अमरीकी देश निकारागुआ में कलीसिया ने सरकार के खिलाफ 2018 के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्यस्थ के रूप में काम किया था। अशांति के दौरान मारे गए 360 से अधिक लोगों के लिए न्याय की मांग करने के कारण कलीसिया और सरकार के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। गुरुवार को संत पापा ने आशा व्यक्त की कि कम से कम लोकोपकारी सहायता में संलग्न धर्म संघियों को वापस आने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कम से कम मैं यही उम्मीद करूंगा कि मदर तेरेसा की धर्म बहनों को वापस आने की अनुमति दी जाए। संत पापा ने कहा कि यह सच है कि ये महिलाएं क्रांतिकारी हैं, किंतु ये सुसमाचार की क्रांतिकारी हैं। ये किसी के खिलाफ युद्ध नहीं भड़का रही हैं। इसके विपरीत हम सभी को इन महिलाओं की जरूरत है, इसलिए उनका देश निष्कासन समझ से बाहर है। कजाकिस्तान की 3 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के दौरान चीन के साथ संबंध सुधारने का मौका खोए जाने पर संत पापा फ्रांसिस ने अफसोस जताया है। गुरुवार को संत पापा ने पत्रकारों से कहा कि वे चीन के इस व्यवहार को समझने में असमर्थ थे, तथापि चीन के निर्णय का सम्मान करते हैं। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पापा फ्रांसिस मंगलवार से कजाकिस्तान की प्रेरिति की यात्रा पर थे तथा यात्रा के अंतिम दिन गुरुवार को वे विश्व के विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ अंतरधार्मिक सम्मेलन में उपस्थित थे। बुधवार को ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान की राजकीय यात्रा पर थे। परम धर्म पीठ ने बीजिंग को उपलब्धता की अभिव्यक्ति भेजी थी कि संत पापा फ्रांसिस चीनी नेता की बुधवार को कजाक राजधानी नूर सुल्तान की संक्षिप्त राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए उपलब्ध थे, किंतु चीन ने उत्तर में कहा कि इसके लिए समय पर्याप्त नहीं होगा। खोए हुए अवसर के मद्देनजर चीन में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर कठोर कार्रवाई और कैथोलिक कलीसिया के साथ जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच संत पापा फ्रांसिस से चीन में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के लिए कहा गया। इसके उत्तर में संत पापा ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति राजकीय यात्रा पर थे, किंतु मैंने उन्हें नहीं देखा। वैटिकन के अधिकारियों ने इसे संबंधों के सुधार का मौका गंवा देना निरूपित किया है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा, चीनी मानसिकता को समझना आसान नहीं है, लेकिन इसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इसका सम्मान करता हूं। रोम की वापसी यात्रा के दौरान ही गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस ने बताया कि वे आगामी नवंबर माह में बहरीन की यात्रा की योजना बना रहे हैं तथा अगले वर्ष फरवरी में दक्षिण सूडान और कांगो की यात्रा करने की मंशा रखते हैं। पत्रकारों को संत पापा ने बताया कि उनके घुटने का दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ है और उनके लिए किसी भी प्रकार की यात्रा कठिन थी, तथापि घुटने में दर्द के बावजूद आगामी नवंबर माह में वे बहरीन की 3 दिवसीय यात्रा करना चाहते हैं। इस यात्रा के विषय में वैटिकन के प्रवक्ता मतेओ ब्रूनी ने कहा है कि बहरीन में संत पापा की यात्रा विचाराधीन है। गौरतलब है कि घुटने में दर्द के कारण जुलाई माह के लिए निर्धारित संत पापा फ्रांसिस की दक्षिण सूडान और कांगो यात्रा को डॉक्टरों की सलाह के बाद रद्द कर दिया गया था। दक्षिण सूडान में संत पापा फ्रांसिस की यात्रा में कैंटरबरी के एंग्लिकन महाधर्माध्यक्ष जस्टिन वेल्बी और चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के मध्यस्थ भी साथ जाने वाले थे। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा कि हाल में उन्होंने महाधर्माध्यक्ष वेल्बी से बात की है और हमने फरवरी में दक्षिण सूडान जाने की संभावना देखी है, और यदि मैं दक्षिण सूडान जाता हूं तो कांगो भी अवश्य जाऊंगा। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।